आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि सिंगापुर के साथ बन सकता है ट्रैवल बबल। भारत में चक्रवात ताऊते पकड़ रहा है तेजी और 38 क्रिकेट खिलाड़ी भारत से लौटे ऑस्ट्रेलिया। और अब खबरें विस्तार से। भारत से लौटी प्रत्यावर्तन उड़ानों पर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये फ्लाइट नई दिल्ली से उड़ान भरकर शनिवार को डार्विन पहुंची थी। इस फ्लाइट में कुल 78 लोग ही सफर कर पाए थे, क्योंकि बाकी 70 लोग या तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे या किसी पॉजिटिव व्यक्ति के निकट संपर्क थे। इसी बीच आज ब्रिटेन से भी एक प्रत्यावर्तन उड़ान डार्विन पहुंचेगी। इस उड़ान पर 140 यात्रियों की उम्मीद की जा रही है। भारत से दूसरी प्रत्यावर्तन उड़ान 23 मई को ऑस्ट्रेलिया आएगी। बॉर्डर खोलने के बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन अपने फैसले पर डटे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगला ट्रैवल बबल सिंगापुर के साथ बनाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल के लिए अपने अगले साल के मध्य में बॉर्डर खोलने के फैसले पर ही बरकरार है। श्री मॉरिसन का कहना है कि इस साल इसीलिए फेडरल बजट का सारा ध्यान आर्थिक लाभ पर लगाया गया है, क्योंकि सरकार समझती है कि इस बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
There are some practical challenges that we are working on now and finding solutions to, and you'll move incrementally, not all in one day, but right now it is not safe to be flicking the switch on those. I'm looking forward to further discussions with the Singapore government about them being the next potential country. Now, I still think that is some way off, particularly as we've seen, and it's a telling reminder.
बॉर्डर बंदी के चलते कई ऑस्ट्रेलियाई विदेशों में फंस गए हैं, जिसमें से 9000 नागरिक और निवासी भारत में रजिस्टर्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्वारंटीन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेबर सांसद जोएल फिट्ज़गिबन ने चैनल 7 पर कहा है कि सरकार ने पिछले मंगलवार को आए बजट में $100 बिलियन का खर्चा तो दिखाया है, पर उसमें कहीं भी संगरोध व्यवस्था को सुधारने की बात नहीं की गई है।
Now, I don't have the perfect solution for fixing the problem after the event. It's a problem, a massive problem created by the government's missteps. And now, sadly, it's not able to be fixed in quick time.
फेडरल सरकार ऑस्ट्रेलिया की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को बचाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। देश की आखिरी बची रिफाइनरियां, लिटन की एम्पल रिफाइनरी और जीलोंग की वीवा रिफाइनरी को तेल की कीमतें संभालने के लिए और उत्पाद बनाए रखने के लिए करदाताओं के $2.3 बिलियन दिए जाएंगे। फेडरल ऊर्जा मंत्री एंगस टेलर ने ABC से कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।
This is about saying we will support the refineries to stay in the market in the worst possible circumstances. We won't pay them anything if prices are solid, are high, and ultimately as part of a broader package which ensures that we have the fuel we need when we absolutely need it. So it means our truckies, our tradies, our commuters, our emergency service workers have access to that fuel when they really need it, as they really need it, at an affordable price too, because an important part of this is making sure we've got competition and supply in the market as well as the reliability.
पिछले सप्ताह पेश हुए बजट में भी इन दोनों कंपनियों को संसाधन विकास, फ्यूल स्टॉक के संरक्षण और रोजगार बनाए रखने और भविष्य में और रोजगार पैदा करने के वास्ते $302 मिलियन आवंटित किए गए थे। 50 वर्ष से ऊपर के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अब किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर से COVID-19 का टीका लगवा सकते हैं। इस उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। टीके की दूसरी खुराक पहली खुराक मिलने के 12 हफ्ते के बाद दी जाएगी। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजिक्लियन का कहना है कि 50 साल से अधिक के उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और फाइजर के टीकों की प्रभावशीलता पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
New South Wales Health already contacted me last week to tell me my second jab is due in the first week of June, and I'm looking forward to getting that. And I only turned 50 last year. So what has been demonstrated is the efficacy of both vaccines. Both vaccines are effective in preventing you from getting the virus and preventing you from passing it on. But no vaccine is foolproof. No vaccine is 100%. But what we're aiming now during a COVID-safe world is preventing people going into hospital.
आज से शुरू हुई कार्यवाही में एक रॉयल कमीशन ये तय करेगी कि क्राउन कैसीनो मेलबर्न में कैसीनो का लाइसेंस रखने के लिए योग्य है या नहीं। इस कार्यवाही में क्राउन कैसीनो पर ठीक से नजर रखने के सिलसिले में विक्टोरियन कमीशन फॉर गैम्बलिंग एंड लिकर रेगुलेशन से भी पूछताछ की जाएगी। साल 2019 में ये इल्ज़ाम लगने के बाद कि जंकेट ऑपरेटर चीन से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से ताल्लुक रखने वाले चीनी गैम्बलर्स को कैसीनो लेकर आ रहे थे, क्राउन कैसीनो पहले ही उनके साथ काम करना बंद कर चुका है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आज 10 मिनट तक चली हवाई बमबारी में इसराइल ने गाजा शहर के उत्तर से दक्षिण के कई इलाकों में भारी क्षति पहुंचाई है। यह हवाई बमबारी 24 घंटे पहले हुई कार्यवाही से भी अधिक तीव्र थी, जिसमें 42 फिलिस्तीनी, जिनमें 10 बच्चे भी शामिल थे, मारे गए थे। ऑस्ट्रेलिया में फिलिस्तीनी राजदूत इज्जत अब्देल हदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर आरोप लगाया है कि वे इसराइल और फिलिस्तीन के बीच इस हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों की भर्त्सना तो की है, मगर वे किसी अर्थपूर्ण शांति निष्कर्ष पर पहुंचने में नाकाम रहा है। राजदूत अब्देल हदी ने SBS अरबिक 24 से कहा है कि अमरीका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति को अपने दायित्व पूरे करने से रोक रहा है।
The international community protects Israel once again and gives it a license to kill. And the United States unfortunately does not allow the Security Council to carry out its duties to maintain international peace and security, and that Israel still enjoys great immunity in the international community.
उधर अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि वे इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे टकराव पर काम कर रहे हैं। श्री बाइडेन ने ईद के मौके पर चल रहे एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुरक्षा इसराइली और फिलिस्तीनी दोनों ही तरफ के लोगों का अधिकार है।
All people should be able to practice their faith with dignity, without fear of harassment or violence. We will defend the right of all. As we stand with you, we also believe Palestinians and Israelis equally deserve to live in safety and security and enjoy equal measure of freedom, prosperity, and democracy. And my administration is going to continue to engage Palestinians and Israelis and other regional partners to work towards sustained calm.
और अब खबरें भारत से। केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में रविवार को तबाही मचाने के बाद चक्रवात ताऊते उत्तर में गुजरात की ओर बढ़ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही हल्की बारिश हुई है और समुद्र में ऊंची लहरें भी उठी हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण सुबह कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। चक्रवात के कारण हुई घटनाओं की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि सैकड़ों घरों का नुकसान और स्थानीय लोगों को इन घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान ताऊते और तीव्र हो सकता है और आज शाम तक ये गुजरात के तट तक पहुंच सकता है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में पिछले कुछ दिनों में कमी देखी जा रही है। आज सुबह आए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण के नए मामलों की दैनिक संख्या 3 लाख से नीचे आ गई है। 21 अप्रैल के बाद ये पहली बार है जब 3 लाख से कम नए मामले दर्ज किए गए हों। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में 2,81,386 नए COVID-19 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4,106 मरीजों की घातक वायरस के वजह से मौत भी हो गई है। हालांकि चिंता का विषय यही है कि मौत का आंकड़ा अब भी रोज की दर पर 4,000 के पार बना हुआ है। उधर देश में अब तक 2,74,390 लोग वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56.84 रुपये और अमरीकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 78 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। मालदीव से उड़ान भरने के बाद भारत से आने वाले 38 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और पदाधिकारी आज तड़के सिडनी पहुंच गए। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारत में चल रही T20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खेलने भारत पहुंचे थे, लेकिन बढ़ते कोरोना फैलाव के कारण श्रृंखला को स्थगित कर दिया गया था। अब यह दल सिडनी के अलग अलग होटलों में अगले 2 हफ्ते तक क्वारंटीन करेगा। पूर्व टेस्ट खिलाड़ी माइकल हसी, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, अलग फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे। और अंत में एक नज़र कल यानी मंगलवार के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज बारिश की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 24 डिग्री जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल आंशिक तौर पर बादल घिरे रहेंगे। यहाँ अधिकतम तापमान 19 डिग्री जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मेलबर्न में कल बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 18 डिग्री जबकि न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में कल तेज धूप खिली रहेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान 13 डिग्री जबकि न्यूनतम -3 डिग्री रह सकता है। सिडनी में तेज धूप खिले रहने के आसार हैं। यहां का अधिकतम तापमान 20 डिग्री जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में धूप छांव का मौसम रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 23 डिग्री जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। डार्विन में कल धूप ही धूप है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।